नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। देहरादून में श्री मोदी ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति, बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी ने बाढ़ और संबंधित आपदाओं में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान ये घोषणा की। हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी दीर्घकालीन देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा। श्री मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित इस समय घोषित की जा रही सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही उत्तराखंड में नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा उन्मुख संगठनों के कर्मिकों के प्रयासों की सराहना की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
प्रधानमंत्री का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण निरस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज वाराणसी में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस 2 राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस साझेदार ही नहीं, एक परिवार भी है। उन्होंने कहा, भारत ने हमेशा मॉरिशस में उपनिवेशवाद के उन्मूलन और उसकी संप्रभुता को पूर्ण मान्यता देने का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। यह पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 3 दिन का यह सम्मेलन आज शुरू हुआ। सम्मेलन का विषय है, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कई नागरिक संगठनों ने युवाओं से राष्ट्रपति के साथ मिलकर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने, संवैधानिक मूल्यों को अपनाने और देश में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए काम करने का आग्रह किया है। सीपीएन यूएमएल पार्टी ने भी यह कहा है कि देश को संविधान और लोकतांत्रिक उपायों के अनुसार एक राजनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं प्रदर्शनकारी युवा बातचीत के लिए प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। युवा सड़कों पर सफाई अभियान में शामिल हुए। इस बीच प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 34 हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। इनमें माओवादी संगठन का एक कमांडर भी शामिल है। इंडोनेशिया के बाली में हुई मूसलाधार बारिश से नदियों में आए उफान के कारण एक दशक में इस द्वीप में सबसे भीषण बाढ़ आई है और 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। बाढ़ से सबसे अधिक हताहतों की संख्या वाले स्थान देनपसार में 2 लोग लापता हैं। घरों के जलमग्न होने, सड़कें बाधित होने और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण सैकड़ों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पंजाब के फाजिल्का में पंजाब पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में सीमा सुरक्षा बल ने 27 पिस्तौल और 470 जिंदा कारतूसों की एक बड़ी खेप बरामद की है। संयुक्त बल ने सीमा पार के 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। लक्ष्य सेन और आयुष सेट्टी हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और आयुष सेट्टी आमने सामने होंगे। उधर किरण जॉर्ज को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और एशिया कप क्रिकेट में हांगकांग ने बांग्लादेश को 144 रन का लक्ष्य दिया है। कल दुबई में पाकिस्तान का सामना ओमान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।